उन अष्टदेवों का जो विशेष पार्ट है साथ रहने का, वो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक का है। क्या सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री अष्टदेवों की नहीं है? तीन साल कहां, जब प्रत्यक्ष होना होगा तभी तो चलेगी। जब जिसको प्रत्यक्ष होना होगा, कोई कहे कि 76 में ही प्रत्यक्षता वर्ष अपने तो बाप दादा ने क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो फर्स्ट ब्रह्मा है, वो फर्स्ट ब्रह्मा उसका मृत्युलोक 100 साल से पहले पूरा ही नहीं होता, तो बोलेंगे क्यों? तो जिस टाइम पर जो बात आती है उसका रहस्य लुदा हुआ है वाणी में, और वो रहस्य भी बाप बताने वाला है। माँ की आत्मा तो गीता माता है, गीत गाने में वाली, जैसे गीत गाने वाले गाते हैं, बहुत से गीत गाने वाले ऐसे में उनका अर्थ गहरा मालूम ही नहीं है उनको, कहाँ अर्थ लग रहा है अब पता चल रहा है। वो गीत जिस समय गाए गए थे गाने वालों को पता नहीं, और असली बात यहां लागू हो रही। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल वहां बोलती है, लेकिन उसका असली अर्थ जो बाप के बच्चे हैं उनको पहले पता पड़ता है। और
बाबा ये मनन चिंतन करने पर रतन भी निकलते और विष भी निकलते
हैं। जब तक सागर मंथन नहीं करेंगे तब तक रतन नहीं मिलेंगे।
रतन लेने छोड़ दे
हैं,
जो मनन चिंतन करेंगे ना उसमें विष भी निकलेगा और रतन भी निकलेगा।
वो तो विष पीने वाला तैयार बैठा है, तुम गाय के लिए चिंता कर रहे हो?
भाई
इसको पिलाए, जो पीने वाला उसी को पिलाओ। घबराहट होती है क्या? घबराहट नहीं हो रही? अच्छा हाँ। और
बाबा अपने सभी धर्मों के बीच समाये हुए
हैं,
अपने सभी धर्मों के बीच समाये हुए।
मेरे को गाय के लिए समाये, तेरे में समाये, तेरे मम्मा पापा में समाये, मेरे को गाय के लिए समाये। मैं देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनूंगा। हाँ जी
बाबा,
हाँ
फोटो में से कोई, कोई में से भी कोई, फोटो में से कोई, कोई में से कोई जो 108 पहचानते हैं बाप को, तो शिव बाबा उनमें 108 में प्रवेश करते हैं।
शिव बाबा,
शिव बाबा,
शिव बाप,
शिव बाप,
शिव बाप प्रवेश करते हैं कि शिव बाबा प्रवेश करते हैं?
शिव बाप तो 108 में प्रवेश।
अच्छा हाँ ठीक है। और
शिव बाबा 108 में प्रवेश करते हैं,
ठीक है।
इसी तरह से जैसे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं बोला है,
हाँ,
तो ब्रह्मा है,
हाँ,
वो भी 1000 आत्माओं में प्रवेश करेगा क्या?
उसकी आत्माएं 1000 सहयोगी बनती है। क्या 1000 भुजाओं में प्रवेश करने वाली बात नहीं बताई, ये बोला कि बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। तो बच्चे बोलने वाला कौन है? बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं शिव बाबा। तो शिव बाबा के लिए जो विशेष नजर में बच्चे हैं राजा बनने वाले, उनमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, अभी भी बजाती है। जिनमें प्रवेश करके दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, उनकी सर्विस को बढ़ाए देते हैं, जो हिम्मत करने वाले बच्चे हैं, हिम्मत बच्चे मददे बाप, जो साबित होने वाले बच्चे हैं, उनको सहयोग मिलता है।
उनकी प्रैक्टिकल में प्रविष्टा होती है या बुद्धि उससे प्रविष्टा?
जब उनको शरीर ही नहीं है तो प्रैक्टिकल कहाँ से होगा? ब्रह्मा को शरीर है, है?
तो
शरीर से उसको प्रैक्टिकल थोड़ा ही कहेंगे।
उसका एक ही मुकर रहता है ना, जो पूजा।
अरे कभी ब्रह्मा की बात करते हो, कभी शिव की, किसकी बात कर रहे?
हम दादा
वो अभी ब्रह्मा की बात कर रहा है। ब्रह्मा की बात जो कर रहा है कि उसकी हजार भुजाएं हैं, हाँ जी आप किसकी बात कर रहे हैं?
त्रिमूर्ति शिवा मतलब जो त्रिमूर्ति शिवा बन गए हैं, तो चांद और जो सूरज है वो कौन है?
त्रिमूर्ति
मुंबे दिया ऊपर
त्रिमूर्ति शिवा बन गए,
बने ना
बन गए, मैंने पहले नहीं थे,
अभी ज्ञान से बन गए ना,
ज्ञान से बन गए, पहले थे ही नहीं,
पहले थे मगर आपने बाबा ने स्पष्ट की कर दिए ना, बाबा ने क्लियर किया ना,
तो क्या कहने
पर चांद और सूरज ऐसा है ना,
कौन है
सूरज चांद और तारे
बाबा, ओम जो निकल गए ना उसके ऊपर जो
ओम शब्द है
उसके ऊपर तो आगे चल रहे,
ओम शब्द में आ शब्द भी है, आ अक्षर भी है, वो अक्षर भी है और माँ अक्षर भी है, आ ऊ और माँ माने ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और जो माँ का कार्य करने वाला है कार्यवाहक उसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्या यज्ञ के आदमी ब्रह्मा तो था लेकिन सहन शक्ति का पार्ट बजाने का उसका पार्ट नहीं था, इसलिए वो पार्ट कौन बजाएगा, इसलिए उसको सबसे ऊपर रखा गया चंद्रमा के रूप में, वो भी चाहिए चारों आत्माएं चाहिए और बिंदी भी चाहिए पांचों चाहिए, आ ऊ मा चंद्रमा और बिंदु रूप बनने वाला, ये पांच आत्माएं चाहिए इसलिए हो गया ओम विष्णु। गाते भी है ओम मंगलम भगवान विष्णु,
बाबा ने तो क्राइस्ट की आत्मा के लिए कहा है जैसे बेदर का बेदर का पार्ट बजा रही
है,
इसी तरह से बाकी जो धर्म पिता है उनका भी यही कहा होगा,
नहीं
क्राइस्ट के लिए क्यों कहा स्पेशल,
इसलिए कहा कि वो तो ध्वंस का पार्ट बजाता है, क्या जिसको सारी दुनिया का विनाश करना हो वो पहले अपने को राख बनाए, क्या करे अब खुद को राख बनाएगा तो दुनिया को खाक बनाएगा, खुद को ही खाक नहीं बनाया तो दुनिया को खाक में कैसे मिलाएगा,
बाकी विदेशी जो है विदेशी धर्म पिता जो है बाकी
हाँ
उसी तो ध्वंस का पार्ट बजाते हैं एक प्रकार से,
एक प्रकार से बजाते हैं लेकिन उस रूप में थोड़े ही बजाते हैं है। और
बाबा ये 100 साल का संगम होगा ना, तो 100 साल में हर धर्म की बीज रूप जो भी धर्म पिता है उनकी धर्म खंड की स्थापना हो जानी चाहिए ना, जैसे आदि सनातन देवी देवता की स्थापना करने के लिए बाबा आते हैं, तो इसी 100 साल के अंदर भी यही सब धर्म स्थापन होने चाहिए ना, तो ही
आपको चिंता लगी हुई है तो जरूर हो जाएगा। हर धर्म की शूटिंग का मतलब क्या है, 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग हो रही है तो ड्रामा में कितने एक्टर्स हैं? एक्टर्स का टोटल नंबर क्या है मैक्सिमम 500-700 करोड़, तो जो भी 500-700 करोड़ उसमें सब धर्म के आ गए, तो हर धर्म की शूटिंग कहाँ हो रही है, उसी संगम में ही तो हो रही है। अब आपको अपनी चिंता लगी हुई है, माता जी को कुछ अपनी चिंता सता रही है,
अपनी चिंता कोई नहीं, ये तो प्रश्न उठा तो
अरे उठा ना, ड्रामा फ्रेंड अनुसार उठता है,
नहीं कर लेना चाहिए ना।
आगे आगे और आगे
बाबा मुरली में बोला है कि ब्रह्मा जो है वो नर है,
है?
और नर जो करे वो नरक है, यज्ञ के आदि में नर ब्रह्मा जो किया वो नरक था, और उस नर को सहयोग देने वाली जो द्वार थी वो गीता माता,
ठीक है, लेकिन झूठी गीता माता साबित हुई
ना, वो झूठी साबित हुई, तो उस समय सेवक राम की बुद्धि में ये बात बैठी क्या?
क्या?
स्त्री चोला ही नरक का द्वार है, क्योंकि उस क्योंकि बाबा एक मिनट राम वही सेवक राम की आत्मा जब अगले जन्म में अगला जन्म लेता है तो शंकर जो दूसरी मूर्ति शंकर का पाठ बजाती है, तो उसी शंकर को आचरण करने वाला जो शंकराचार्य की आत्मा है जो अपने आप को कहता है कि मैं शंकर को आचरण करता हूँ, उनने तो यही कहा कि स्त्री चोला जो है वो स्वर
वो आचरण नहीं करता, वो शंकर
टाइटल लेता है,
टाइटल लेता है लेकिन आचरण नहीं करता, क्योंकि वो आत्मा जो है वो द्वापर के अंत में आने वाली और कलयुग के आदि में आने वाली जो आत्मा है शंकराचार्य की, वो वास्तव में ठेठ सन्यासी है, निवृत्ति मार्ग का। और तुम बच्चों के लिए बोला है, तुम कभी निवृत्ति मार्ग में जाते ही नहीं हो, तुम्हारे संस्कार ही नहीं है निवृत्ति के। मुरली बोला है तुम बच्चे कभी निवृत्ति में जाते ही नहीं, तुम्हारे निवृत्ति के संस्कार ही नहीं, एक जाए तो दूसरे के साथ प्रवृत्ति, दूसरी जाए तो तीसरे के साथ प्रवृत्ति, तीसरी जाए चौथे के साथ प्रवृत्ति, निवृत्ति होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।
पक्की प्रवृत्ति में
पक्की प्रवृत्ति
तो फिर बाबा जैसे बाबा बताते अंत में सभी धर्म पिता जितने भी हैं,
पक्की प्रवृत्ति का मतलब ये है जब तक एक है तब तक है, और जब नहीं है तो निवृत्ति में रह नहीं सकते, प्रवृत्ति चाहिए ही चाहिए। इसलिए मिसाल दिया है भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, अब दूसरी लेते हैं, दो तीन चार भी कर लेते हैं, ये ब्रह्मा भी पुराना तन है ना
बाबा। मुरली ने तो यही बताया कि अंत में सभी जितने भी धर्म पिता है उनको भी जब संदेश मिलेगा
है,
तो वो उसी समय जब शरीर छोड़ेंगे तो द्वापर में जब उतरते हैं तो अंत मते गते अनुसार वो वही संदेश देते आते
बिल्कुल
द्वापर में,
जितना उन्होंने समझा है उतना ही देंगे।
हाँ, जितना उन्होंने अनुभव किया महसूस करते हैं
है।
तो शंकराचार्य आके ये क्यों कहता है कि नारी नरक का द्वार है?
हाँ।
क्या वो उस समय ये महसूस करता है कि नारी नरक का द्वार है अंत में जब संदेश?
बिल्कुल अनुभव करता है, उसके अंदर संस्कार ही नहीं है साथ रह करके जीत पाने के, इसलिए उसके अंदर अनुभव क्या भरा हुआ है, हिम्मत ही हारे बैठे।
तो उस समय क्या वो जो गंगा जो है
हाँ
सन्यासियों को सुधारती है
हाँ,
तो जो गंगा जो स्त्री चोला है
वो ऊपर वाले सन्यासी को नहीं सुधारती है, जो ऊपर से नीचे उतरता है द्वापर के अंत में वो नहीं सुधारता है। जैसे बोला हमें तो आज जैसे बोला कुत्ते की पूंछ 12 साल तक जमीन में लंबी लंबी दबा के रख दो और जब 12 साल के बाद निकालेंगे तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। तो ऐसे ही ये धर्म पिताएं हैं, जबरदस्त हठयोगी है, इनको ब्रह्मा भी उतरा है भगवान भी उतरा है तो भी ये सुधरने वाले नहीं है।
लेकिन आखिर में जब उनकी बुद्धि को संदेश दिया जाता है तो यही
वो आदर वो पूरा संदेश नहीं ले पाते,
जितना भी लेते हैं बाबा
जितना लेते हैं वो अधूरा लेते हैं,
लेकिन मानते तो उन्हीं से है ना, गंगा से ही मानेंगे ना, गंगा के द्वारा जो संदेश दिया जाएगा उसी को मानेंगे।
गंगा पतित पावनी तो नहीं है?
नहीं, पतित पावनी नहीं है
हाँ?
लेकिन जब गंगा देगी
हाँ?
हाँ? तो उस समय क्या वो ये सोचती है कि गंगा ने इतना लेट दिया तो नारी नरक का द्वार है?
गंगा के लिए थोड़े बोलते हैं नारी नरक का, गंगा को तो माँ मानते हैं।
नहीं, स्त्री चोला देखकर
गंगा को तो माता मानते हैं, माता को तो बहुत रिगार्ड देते हैं, डिसरिगार्ड देते हैं पत्नी को। हाँ जी,
गंगा की सवारी जो मगरमच्छ पे दिखाई
है,
मगरमच्छ कौन?
मगरमच्छ जो सारी मछलियों को पकड़ जाए, सागर में जितनी मछलियां हो और सब मछलियों को खाने वाला जंतु कौन सा? मगरमच्छ। जो सारी मछलियों को जिनमें बदबू आती है, जब मछलियों को ही खा जाएगा तो उनकी बदबू भी खराश हो जाती है। और
बाबा जो पिछला पॉइंट था उसी में माना आदि में जब हुआ ऐसा नरक बना जब ब्रह्मा के द्वारा, तो उस समय सेवक राम की बुद्धि में बैठा ही नहीं कि नारी नरक का द्वार है करके गीता माता को उन्होंने दोष दिया ही नहीं क्या उस समय?
जिसका आदि से अंत तक ऐसा पार्ट है कि वो प्रवृत्ति से थकता ही नहीं, जो सन्यासी हैं वो प्रवृत्ति से थक जाते हैं, इसलिए छोड़ के भागते हैं। उसका तो संगम युग में आज से लेकर के अंत तक ऐसा पार्ट है कि वो थकने वाला नहीं है, वो प्रवृत्ति का पक्का है। शिव की वृत्ति एक में पक्की है, वो कौन है? शिव की। शिव माना ज्योति बिंदु, उसकी प्रवृत्ति एक में पक्की है, वो कौन है? प्रजापिता। तो ये पक्की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति आज से लेकर के अंत तक, कलयुग जब समाप्त होता है और परमात्मा शिव आने को होते हैं तब तक वो प्रवृत्ति टूटती नहीं, माने वो आत्मा आत्मिक स्थिति में रहने वाली है जन्म जन्मांतर। इसलिए ढेर सारे शास्त्रों का सृजन होता है उसके द्वारा। आत्मिक स्थिति में रहे बगैर मनन चिंतन मंथन नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा स्थिति नहीं रहती द्वापर युग से। ये भूल जाते हैं कि मेरा हीरो का पार्ट है, ये भूल जाते हैं कि परमात्मा का पार्ट किसका है, परमात्मा पार्टधारी कौन है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है।
छिहत्तर से इस बार की शूटिंग होती है,
है?
छिहत्तर से इस बार की शूटिंग होती है
क्या?
क्योंकि ये एहसास होता है कि मैं परमात्मा पाठदारी हूँ।
उससे पहले नहीं,
छिहत्तर से ही परमात्मा पाठ का ये होता है ना,
परमात्मा पाठ की प्रत्यक्षता होती है सन 76 में।
लेकिन उसके पहले तो सेवाग्राम जी थे, उनको भी इस बात का एहसास नहीं था
क्या
परमात्मा पाठ का पाठदारी हूँ?
बड़े निश्चय से बोल रहे हैं,
अगर होता तो छोड़ते नहीं किए को
ना। सन 76 से पहले सन 74 में 73 में 71 में 69 में अनुभूति नहीं थी, ये पक्का है।
69 से बात को बैठ सकता है,
थोड़े नीचे उतरे।
69 से जब से ज्ञान में आए, ज्ञान लेने के बाद
वो तो बता दिया मुरली में कि पहले इतना ज्ञान नहीं था इसलिए टूट पड़े। टूट पड़ने का कारण बता दिया, पहले अधूरा ज्ञान था और 68 में गीता माता संपन्न रूप से आ जाती है। जो कुछ भी परमात्मा को गीता ज्ञान सुनाना होता है वो गीता माता के द्वारा सुना देता है
69 तक।
हाँ जी, इसलिए अधूरा ज्ञान होने का सवाल ही नहीं।
69 तक ज्ञान पूरा हो जाता है
किसके लिए?
प्रजापिता के लिए,
एक के लिए। हाँ जी,
और 69 से लेकर के 76 तक
मनन चिंतन मंथन
वो ज्ञान गर्भ का जो शूटिंग है उसका
आकारी स्टेज।
आकारी स्टेज,
हाँ जी।
और 76 के बाद प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है।
76 के बाद बात का प्रत्यक्षता वर्ष
तो प्रैक्टिकल हो गया ना वो।
एक होता है आत्मा का प्रवेश और एक होता है आत्मा प्रवेश करने के बाद 4-5 महीने में प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष होने को जन्म कहा जाता है।
दादा, ये साइंस वाले लोग ने बताया कि 40 करोड़ साल के बाद सूर्य का पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा।
अच्छा,
सूर्य और पूरे ग्रह सब खत्म हो जाएंगे तो फिर ये ड्रामा वगैरह कैसे होगा? मतलब फिर बाद में भगवान वगैरह,
ये विश्वास तो तुमको हो गया ना, इसलिए कैसे का सवाल कर रहे हैं? साइंस वालों के ऊपर तुमको विश्वास हो गया ना, इसलिए कैसे का सवाल कर रहे हो? जिनको विश्वास ही नहीं है वो सवाल क्यों करेंगे? वो तो कहते हैं ये सब झूठी बातें हैं। जैसे डार्विन की थ्योरी को आगे के आने वाले साइंसदान ने झूठा साबित कर दिया, ऐसे ही ये थ्योरी उनकी आगे चल करके झूठी साबित हो जाएगी।
बाप जो है वो धर्मी का आधार लेके चलता है ना, बाप जो है धर्मी का आधार लेके चलता है।
बाप क्या, राम और कृष्ण दोनों ही, बाप और बच्चा दोनों ही धर्मी का आधार लेकर के चलते हैं।
मगरमच्छ तो ज्ञानगर में रहता है।
हैं?
गंगा की सवारी बताई है।
हैं?
किसकी लेवल, कौन सा मगरमच्छ?
कोई होगा मगरमच्छ का अवतार, मत्स्यावतार। जो मत्स्यावतार होगा उसकी विशेषता शास्त्रों में बताइए। एक ऋषि जी थे, वो स्नान करके कमंडल भर के जा रहे थे, उसमें एक मछली आ गई छोटी सी, झींगा मछली। तो वो जब तक घर पहुंचे तब तक वो बड़ी हो गई, वो कमंडल उनका भरने लगा। उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी हो गई, तो कहां फेंके जाके अब। उन्होंने उसे घड़े में डाल दिया, वो घड़े से भी बड़ी होने लगी। फिर उसे उन्होंने टब में डाल दिया, वो टब से भी बड़ी होने लगी। फिर उसे उन्होंने एक तालाब बनवाया, उसमें डाल दिया, वो तालाब भी भर गया मछली के मोटे ताजेपन से। फिर उन्होंने सोचा अरे ये तो बढ़ती चली जा रही है, ले जाके नदी में डाला, नदी से भी लंबी चौड़ाई ज्यादा हो गई उसकी। फिर उठा करके उसको सागर में डाल दिया। तो ये नदी है क्या, जिस नदी में वो मछली माछला का रूप बनते बनते क्या बन जाती है, मगर मगरमच्छ बन जाती है। मगर के मच्छ के ऊपर फिर गंगा सवारी कर लेती है। जरूर गंगा ने पहले ज्ञान लिया होगा, इससे मगरमच्छ का अवतार बनने वाले से गंगा ने एडवांस नॉलेज पहले ली होगी।
तो बाबा आदि में लेते हैं ना
है?
जब
आदि में एडवांस नॉलेज थी?
नहीं नहीं, जब ये प्रजापिता ने जब गीता माता को सुनाया कृष्ण का रहस्य का, तभी तो वो माता उदय ही थी ना। मतलब बीजारोपण किया, बीजारोपण किया तो गंगा के आत्मा तो वही है ना।
कौन?
वो माता।
कौन माता?
प्रजापिता के साथ में थी, वो सेवाग्राम के साथ में।
हनुमान से नुकसान हो जाता है, लंबे समय तक अनुमान लगाने से लंबे समय का नुकसान हो जाएगा।
तो बाबा उसको पहले कहते हैं
अपना गंगा अलग है, सरस्वती जगदम्बा अलग है, कि सरस्वती जगदम्बा ही गंगा है?
नहीं, अलग अलग है।
तुमने मिला के दोनों को कैसे कर दिया?
एक किधर गया बाबा, एक किधर गया?
एक ही?
एक तो किया ही नहीं ना।
कर तो दिया, अभी तो कह रहे जो गंगा है वही जगदम्बा है।
नहीं बाबा,
ये भर गया इसमें।
नहीं होता, ये ठीक नहीं किया ना।
बोलो क्या कह रहे
बाबा? मतलब जो ये जो है गंगा जो आधार लेती है,
हाँ,
तो मुख से निकलती है बोला
है,
मुख से गंगा निकलती है,
गंगा गौ मुख से निकलती है। हाँ जी,
जिसका आधार ले लिया मतलब गौ मुख का आधार लेती है, मतलब गौ मुख से सवारी करती है, ऐसी बात नहीं करती है।
गौ मुख से निकलती है, गौमुख से गंगा निकली, वो तो उसका उद्गम बताया। फिर जब मैदानी इलाके में आती है तो मगरमच्छ पर सवार हो जाती है, सवारी कर लेती है, अपने कंट्रोल में चलाती है मगरमच्छ को।
आई नहीं
है गंगा, गंग्यान गंगा ही निकली है अंत में। अभी उत्तर भारत से निकली है क्या
बाबा? पूरे 18 साल की वानियां जो क्लियर नहीं होंगे क्या?
हैं?
पूरे 18 साल की जो वानियां चली,
हाँ,
मतलब वो वानियां सब क्लियर,
पहले मिले तब तो क्लियर हो।
लेकिन अभी तो सब पार्ट भी खुलते जा रहा है, जब हफ्ते दो में से भी दो पार्ट खुल गए, तो मतलब वानी साथ 5 साल की वानी, 4-5 साल की वानी सब क्लियर हो गई ना, बाकी तो वानी
जब टाइम आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। तुमको तो आखिरी मान मिल गया ना, तुम्हें क्या चिंता, तुमको आखिरी 5 सालों में जो मुरलियाँ चली हैं उनका निचोड़ मिल गया।
और अभी तो वो भी बात है ना, मुरली में तो ये भी बोला ना कि कराची में जो बक्से में दफन करके रखी है उनको भी क्लियर करना है, फिर उसमें और क्या ज्ञान होगा?
तो कोशिश करो निकाल के ले आओ।
महाभारत में जो कर्ण बता है, कर्ण
हाँ,
भाई बता है, उसके बारे में बाबा ने उसके बारे में कुछ बताया
नहीं है। बता तो दिया कौरव संप्रदाय,
लेकिन वो पांडव का भाई था ना।
पांडव भाई था लेकिन एक बाप से पैदा हुआ थोड़ा ही था,
कौरव का साथ दिया ना।
हाँ कौरव का इसीलिए साथ दिया,
लेकिन था पांडव का भाई।
जो सूर्य से जो पैदाइश होती है, भगवान आते हैं तो सबसे पहले ज्ञान किसको देते हैं? सूर्य को। तो सूर्य से जो पहली पैदाइश होती है वो असुरों की होती है या देवताओं की होती है? असुरों की पहली पैदाइश होती है।
मतलब विदेशी धर्मों में जो है पैदा सबसे बड़ा उसका होना चाहिए बीच।
हाँ जी हाँ जी।
अष्टदेव जो है बाबा,
हाँ
वो आठ दिशाओं से निकलती है।
हाँ जी
आठ दिशाओं से निकलते हैं।
हाँ
तो अव्यक्त वाणी में बाप दादा जो उच्चारते हैं वाक्य वो ही कहते हैं कि चारों ओर के बच्चे।
हाँ
तो चारों ओर के क्यों बोलते हैं?
चार दिशाएं हैं और उनके चार ईशान कौन है, इसलिए आठ दिशाएं हो जाती है। जो चार दिशाएं है ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उनके कोने भी तो हैं।
तो कोने को नहीं गिनते क्या?
कोने को गिनते क्यों नहीं है, लेकिन बाबा बोलते हैं चार मुख्य धर्म बोलते हैं, फिर चार उनके सहयोगी तो है ही है।
यहाँ पे जब चार
दिशाएं हैं तो चार उनकी सहयोगी दिशाएं भी हैं। कौन
तो चार मुख्य दिशाओं के बारे में?
वो चार मुख्य दिशाएं हैं और चार उनके कोण भी है।
अष्टदेव में दो अष्टदेव प्रत्यक्ष हुए, उसके अंदर बाबा ने बोला मात पिता, तो योगिनी बहन को माता बताया। तो ऐसा तो हमारी बड़ी मम्मी छोटी मम्मी दो ही है।
हाँ जी आपको अभी पहचान नहीं है? नहीं है ना पहचान? उसको पहचान नहीं है वो उस लिस्ट में नहीं होगा। जिसको पहचान है तो जरूर उस लिस्ट में होगा। अभी कौन से वंश का फाउंडेशन पड़ रहा है?
सूर्य
वंश का फाउंडेशन पड़ रहा है। और ये कोई हद के बच्चे तो है नहीं, हद के बच्चे हैं या बेहद के? बेहद के बच्चे हैं, कोई छोटे तो है नहीं। तो जो बेहद के बच्चे हैं उनकी बुद्धि में तो आ जाना चाहिए कि सूर्यवंश है तो सूर्यवंशी के कोई अम्मा बाप भी होंगे। सूर्यवंशी की अम्मा और सूर्यवंशी के बाप, चलो बाप तो सबका एक हो सकता है, लेकिन सूर्यवंशी की अम्मा तो चंद्रवंश से आएगी क्या या इस्लाम वंश से आएगी? कहां से आएगी? सूर्यवंश से ही आनी चाहिए। आपकी बुद्धि में नहीं बैठा, जल्दी जल्दी बैठा लो। हाँ अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है।
सागर मंथन के समय जो सर्प चंदन में लाया गया, सागर मंथन के समय वासुकी सर्प लाया गया,
वासुकी सर्प। हाँ जी
वासुकी सर्प कौन?
वसु कौन है? राजा वसु, वसुराज। वसु कहते हैं धन संपत्ति का स्वामी। कौन है?
बापी
है। नहीं नहीं बाप कैसे?
संपत्ति का स्वामी।
वो स्वामी है, पिछले जन्म में था? पिछले जन्म में सारी सृष्टि का बाप था या नहीं था? उसे पहले जन्म में था या नहीं था? था तो वो वसु है। पूर्व जन्मों में द्वापर युग से कलयुग के अंत तक के जन्म 63 जन्मों में उसको वसु कहें। कौन है वसु? अरे अरे धन संपत्ति का स्वामी कौन है? नहीं वो तो कुबेर स्थूल रूप में बता दिया, लेकिन वास्तव में कौन है? शिव बाप जो है वो धन संपत्ति का स्वामी है, प्रजापिता नहीं है। असली वसु कौन है? असली वसु राजा है, वो शिव बाप है और उसका बच्चा हुआ वासुकी। जैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण, विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव, एक मात्रा बढ़ती है फॉलोअर के अर्थ में, ऐसे ही वसु से वासु की नाग। तो बच्चा हुआ क्या है, उसकी खींचतान मची होगी, असल अपनी तरफ खींचते हैं पूछ मुंह की तरफ, मुंह पकड़ के ऐसा की बोला, ऐसा बोला मुरली में, मुरली में ऐसा बोला ना, इस तारीख की मुरली में ऐसे बोला, ये बात ऐसे बोली तो ऐसे क्यों वैसे क्यों, वो मुंह पकड़ते हैं। और देवताएं जो बोला सो अच्छा बोला, जैसे बताओगे वैसे चलेंगे, हमें पीछे पीछे चलना ही तो है। और
इसके लिए शास्त्रों में देवताओं को कमजोर बताया
है,
असलों को बलशाली बताया।
हाँ पावरफुल है ना, तब तो बाप का भी मुंह पकड़ लेते हैं। है मुंह बंद करो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। है
बाबा
2018 में जो है, 2018 में 18 दिन में जब कृष्ण का जन्म होगा तो नारायण का संकल्प उसमें होगा।
हाँ जी,
तो उस समय तो शिव सूक्ष्म तो उसमें प्रवेश होने की बात नहीं है।
चलो ठीक है, पता भी तो नहीं चलेगा कब प्रवेश है कब नहीं चले, कब प्रवेश है।
संपन्न है तो प्रवेश होने की तो बात ही
है।
2036 का संपन्न बोला है
क्यों अलग अलग है, कहाँ रहेगा जो बाप समान बना दिया फिर कहाँ रहेगा ना रहेगा, सवाल ही कहाँ पैदा होता है।
लेकिन वो जाने के बाद तो संगम भी खत्म हो गया ना,
उसका क्या जाना क्या आना अभी तुम्हें पता चलता है, या अभी पता नहीं चलता है तो तब का पता कहाँ से चलेगा।
लेकिन फिर संगम जैसे
वो बुद्धि चलाने की बात है ना, सिर्फ पता तो ना अभी चलता है, न यज्ञ के आज में पता चलता था, न छत्तर में पता चला, और न अंत में भी पता नहीं चलेगा कब आया कब चला गया। अभी भी तुमको डायरेक्शन क्या है, क्या समझो, लेकिन नहीं समझते। सन 18 तक इंतजार करेंगे, फिर ये प्रश्न की विचार बेकार हो
गए,
ये प्रश्न बेकार हो गया ना, लेकिन चलता है। और
बाबा एक वार्तालाप में कहा है कि सात्विक स्टेज में जगदम्बा चैतन्य बुद्धि होती है और तामसिक स्टेज में जड़ बुद्धि बनती है।
हाँ जी,
लेकिन माया जो है सात्विक स्टेज और तामसिक स्टेज दोनों में जड़ बुद्धि होती है।
सात्विक स्टेज में जड़ बुद्धि होती है।
हाँ बाबा वार्तालाप में कहा था,
ये कोई बात नहीं, हर चीज की चार अवस्थाएं होती है, माया की भी चार अवस्थाएं हैं।
तो जड़ बुद्धि की भी चार अवस्थाएं होगी ना,
जड़ तो मई जो बुद्धि है उसकी भी चार अवस्थाएं हैं, धरणी की भी चार अवस्थाएं हैं, प्रकृति की भी चार अवस्थाएं हैं, सत्युग के आदि में सत्व प्रधान, कलयुग के अंत में तमो प्रधान, माया भी द्वापर के आदि में सत्व प्रधान और कलयुग के अंत में तमो प्रधान।
माना सात्विक स्टेज में माया बाप की सहयोगी होती है,
बाप की सहयोगी नहीं होती है, सात्विक स्टेज में भी कुछ न कुछ विरोधी होती है।
तो फिर जड़ बुद्धि हो गई ना बाबा,
है ही जड़ बुद्धि,
तो सात्विक स्टेज में भी जड़ बुद्धि हो गई,
उतनी जड़ बुद्धि नहीं है जितनी पांच तत्वों की आधार जो प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति है प्रकृति, उतनी जड़ बुद्धि नहीं है, इसलिए अंत में माया जो है प्रकृति के पांच मुखों को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। रावण जो है माया रावण प्रकृति के पांच तत्वों को पांच देवताओं को अपनी पाची से बांध करके रखता है, जैसे चाहता है वैसे चलाता है।
जब सात्विक स्टेज में भी थोड़ी सी जड़ बुद्धि होती है माया, माया होती है ना बाबा,
ये कौन सी बात नहीं होती है।
हाँ तो फिर जब बाबा ने बताया कि माया बुद्धि से सबसे पहले सरेंडर होगी, तो थोड़ी सी जड़ बुद्धि होती है
हाँ,
तो फिर पूरा सरेंडर कैसे हो गया।
पूरा सरेंडर होती है इसलिए कि दुनिया के जो भी पांच विकार हैं वो भी सात्विक स्टेज पकड़ते हैं
उस समय,
सत्युग के आदि में
नहीं, लेकिन जब सरेंडर होगी
तभी तो सरेंडर होगी,
तभी तो तामसिक होती है ना,
माया भी कोई आत्मा है ना।
हाँ
आत्मा है, जैसे प्रकृति भी कोई आत्मा है वैसे माया भी आत्मा है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है और कंट्रोल होने वाली कौन है?
करने वाली माया है।
कंट्रोल करने वाली प्रकृति को भी कंट्रोल करने वाली माया है, तो प्रकृति के मुकाबले ज्यादा चैतन्यता है ना उसमें।
नहीं, लेकिन जब सरेंडर करती है बुद्धि तो थोड़ी सी जड़ तो रहती है ना माया की बुद्धि।
देखो रावण है, उसके हाथ में भी पांच वेद शास्त्र दिखाई जाते हैं, जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं वैसे रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। माना प्रकांड विद्वान है या उसे बुद्धू कहेंगे?
विद्वान।
अगर बुद्धू कहे तो सारे ही तो उसके चम्बे में आ गए, सारे ही 33 करोड़ देवता
हैं। लेकिन फिर भी जड़ बुद्धि कहेंगे ना बाबा उनको, विद्वान भले है
तो इतना जड़ बुद्धि कि सबको जड़ बुद्धि बना दिया, सबको मूर्ख बना दिया, तो उनके मुकाबले तो ज्यादा बुद्धिमान हुआ ना,
उनके मुकाबले हो जाता है
तो और किसको रहेगा।
लेकिन
जो माया है वो माया में इतनी बुद्धि की ताकत है कि बापटा का डायरेक्शन उसको मिला हुआ है कि हे बच्ची जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब भटकाओ। तो बुद्धि का कमाल है ना उसका कि प्रजापटा जैसी आत्मा है उसको भी फटका लेती है। ऐसा कोई अहंकार न करे कि माया हमको नहीं गिरा सकती।
सर्वशक्तिमान
के साथ रुस्तम होके लड़ते हैं। रुस्तम जितना ज्यादा रुस्तम बनेगा उसको रुस्तम होके गिराएगी।
प्रजापिता भी सर्वशक्तिमान है।
प्रजापिता किसी मुरली में बताया सर्वशक्तिमान है? हाँ, शिव बाप आकर के उसे सर्वशक्तिमान का टाइटल प्रैक्टिकल में दिलाते हैं। ये प्रैक्टिकल जो टाइटल है वो खुद धारण नहीं करते। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर माना प्रैक्टिकल, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे को बनाते हैं। भगवान है सर्वशक्तिमान, लेकिन तुम बच्चे हो मास्टर सर्वशक्तिमान।
बाबा एक होता है जैसे
तुम बात नहीं समझ पाएंगे फिर उसका जवाब सही नहीं आएगा। हाँ,
जैसे बाबा ने बोला जो पुरुषार्थ करते हैं हम, मतलब एक तो आत्मिक स्थिति में टिकना है, मतलब अपने को खुद को आत्मा समझ के खुद को आत्मिक रूप में देखना, और एक पुरुषार्थ है मनन चिंतन करना, माना ज्यादा मनन चिंतन में ही रहना है, बुद्धि को मनन चिंतन में लगाए रखना, तो दोनों अलग अलग है, तो श्रेष्ठ उनके लिए कौन सा?
दोनों अरस परस है, अलग अलग नहीं है। जितना हम बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, क्या जितना बीज है वो बीज झाड़ से डिटैच हो जाएगा, बीज रूप स्टेज में टिक जाएगा, सूख जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, उतना वो वृक्ष को विस्तार में ले आएगा। कब लाएगा विस्तार में? जब उसमें नमी पानी पड़ेगा। क्या सिर्फ पानी ही नहीं, धरणी भी चाहिए, तो धरणी के संग और पानी के संग से और योग की अग्नि से वो बीज जो है विस्तार को पाता चला जाता है। छोटा सा बरगद का बीज और कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। ऐसे ये विचार सागर मंथन की गति है, जितना अपने को बीज रूप स्टेज में टिकाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करेंगे, न चाहते हुए भी मनन चिंतन मंथन अपने आप चलेगा। विस्तार में जाना सहज होता है या सार में टिकना सहज होता है? सार में टिकना सहज होता है, विस्तार में जाना सहज और सार में टिकने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जिस बात के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है वो ही काम करना चाहिए। और
कहते हो ना पानी मांगने लगोगे।
लेकिन ये छाछ है। हाँ जी
दूध का
है, दूध बहुत पिला दिया है ऊपर वाले ने।
मेरे भाई है ना, कल उन्होंने कुछ पूजा रखा था, वो बाहर से वो ब्राह्मणों को बुलाया था त्र्यंबकेश्वर से, वो सब वो लोग सात्विक यानी अपने हाथ से खाना बनाते, उन्होंने घर से नहीं खाया, तो आपके कोई उनके साथ में कोई बात आई थी, उन्होंने खाना बनाया तो उनको खिलाया गया, घर से नहीं खाया, और वो उन्होंने भी सात्विक राजी था और तामसिक स्टेज होती ना, सात्विक स्टेज होती है ना ब्राह्मणों में भी, तो वो लोग ने ऐसा और वो लोग भी यानी अपने हाथ से खाते बाहर से नहीं खाते।
हाँ जी,
तो वही वही पूछना चाहता हूँ कि उन लोग में भी ऐसे स्टेजेस होते हैं ना सात्विक राजसिक और तामसिक।
लेकिन पकाते समय उनकी बुद्धि में ये थोड़ा ही होता है कि आत्मा क्या है,
तो ज्ञानी नहीं
है आत्मिक स्थिति क्या है, इसलिए उनके वाइब्रेशन देवान के ही रहते हैं। मैं बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ, तुम उनको ज्ञान सुनाओगे सुनेंगे तुम्हारी बात,
हमारी बात को माना है
उन्होंने,
सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते हो।
बाबा मुरली में जिक्र के राजा सगर के, राजा सगर के 60,000 बच्चे थे, उन्हें कपिल मुनि ने श्राप दिया और वो भस्म हो गए, तो ये 60,000 का हिसाब कहाँ लगता है बाबा? क्योंकि बाबा ने कहा है कि नौ धर्म है, नौ धर्म को अगर 50,000 का एक धर्म एक का ग्रुप बना दिया जाए तो
साढ़े मगर क्या,
तो 4,500 लग,
तो अगर मगर करें तो वो तो फिर अनुमान हो गया।
अगर इसीलिए किया बाबा क्योंकि बाबा ने जिक्र 60,000 का किया है,
लेकिन
4,500 का हिसाब 50,000 के रूप से होता है, तो ये 10,000 का जो
60,000 को संदेश मिला होगा
और भस्म
और जो संदेश मिला होगा और संदेश लेकर के उन्होंने एक्ट में लाया होगा, तो उनका गायन हो गया। पुत्र किसके पुत्र?
सागर
के पुत्र, औरों ने उतना पुरुषार्थ नहीं किया होगा,
लेकिन कपिल
उस समय तक औरों ने पुरुषार्थ नहीं किया, उन 7,000 ने पुरुषार्थ किया,
लेकिन बाबा ने मुरली में
बोला। तो अब हिसाब लगाओ कि यज्ञ में कब ऐसा हो ऐसा टाइम हुआ कि 7,000 ने वो संदेश ले लिया, संदेश लेने के बाद पुरुषार्थ शुरू कर दिया, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता को एक दिन दो दिन चार दिन आठ दिन धारण कर लिया, वो ऐसा टाइम कब हुआ? वो सागर के बच्चे बन गए। हाँ धीरे थोड़े ही सागर के बच्चे बने और कपिल मुनि के सामने पहुंच गए। इसलिए पहुंच गए
अश्व घोड़ा
है, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया,
चोरी
क्या कि तुमने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अब आत्मारूपी घोड़े को कपिल मुनि ने चोरी कर लिया या माया रावण ने चोरी किया ना, उनका लगा दिया तो उनको गुस्सा नहीं आएगा?
गुस्सा आने पर बाबा ने कहा कि उन्होंने श्राप दिया
है
तो वो भस्म हो गए। बाबा ने बताया वो काम अग्नि में भस्म हो गए,
काम अग्नि में भस्म हो गए,
श्राप कपिल मुनि के लिए और काम अग्नि में भस्म।
हर क्या जो 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 देवानिया ऋषि मुनि होते हैं वो कैसा श्राप देंगे, नेगेटिव देंगे या पॉजिटिव देंगे?
नेगेटिव
दिया, भस्म हो गए, काम की इच्छा पर भस्म हो गए। अरे जो कपिल मुनि है जिनके नाम पर कपिल नगरी बसाई गई है वो कहाँ के होंगे, उनकी यादगार कहाँ है? कपिल में ही तो यादगार बनी हुई है, तो जहाँ यादगार बनी हुई है वहाँ भस्म हुए होंगे।
और गंगा आने के बाद उनका उद्धार होता है?
हाँ, जब गंगा आती है तो उद्धार होता है, अभी भस्म हो रहे हैं ना,
जब तक काम अग्नि में भस्म होते रहे
अभी पता ही नहीं चल रहा है, मुंह का ही नहीं बंद कर रहे।
बाबा सब प्रश्न हमको ही पूछने पड़ते, आपको कभी कोई प्रश्न पूछने की जरूरत
नहीं पड़ती। हमें कैसे पैदा नहीं होता है? है? बहुत से ऐसे हैं जिनको कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। यहाँ तो सभा में बहुत ऐसे बैठे होंगे जो ये अनुभव करते होंगे हमें कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। बाबा का जो भी बात सामने आती है ज्ञान की वो हमें सही ठीक ठीक ही लगती है, या तो प्रश्नचित्त या तो प्रसन्नचित्त। अगर पूरा हल हो जाए, कोई प्रश्न न रहे और कोई के प्रश्न से प्रभावित भी न हो, तो आत्म की स्थिति में पक्का हो जाता है। दोनों बातें हैं, अपने अंदर भी प्रश्न पैदा न हो और फिर दूसरे का किया हुआ प्रश्न हमको प्रभावित भी न करे। ऐसा न हो दूसरा प्रश्न पैदा कर दे और हम उसकी प्रजा बन जाएं। हाँ, रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट बने ना, वो भी अंदर से देखना है हम कितने रेगुलर स्टूडेंट हैं और कितने पंक्चुअल हैं। और चलो सब प्रसन्नचित्त हो गए। दुनिया में हर चीज की, हर व्यक्ति की, सारी दुनिया की चार अवस्थाएं होती हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो प्रधान। तो जो सारी दुनिया का बीज है उसकी चार अवस्थाएं होंगी या नहीं होंगी? उसकी भी चार अवस्थाएं होती है। जब चौथी तमो प्रधान स्टेज होती है तो वो भी तामसी बन जाता है। ज्ञान भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो बनता है। भक्ति भी सतो प्रधान, सतो सामान्य और तमो प्रधान बनती है। तो संगम युग में प्रजापिता की आत्मा को जब सारे विश्व की कंट्रोलिंग पावर मिलती है तो अंत में वो भी तामसी बनता है। पहले निमित्त मात्र, जब सतो प्रधान सतो सामान्य तो निमित्त मात्र। सब कुछ कौन कर करा रहा है? करण करावन हार कौन है? शिव बाबा। फिर बाद में तमो प्रधान बनता है तो मैं का बकरा बन जाता है। मैंने ये किया। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है तो बकरे का सिर लगाई दिया। प्रभुता पाहि काहि मदनाहि, क्या जब ऊंची कुर्सी मिल जाती है लंबे टाइम तक तो किसको अहंकार नहीं चढ़ता? जिसको देह है उसको देह का अहंकार जरूर चढ़ता है। इसलिए बोला है राम ही क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। और जो भी ड्रामा में है सब कल्याणकारी है। क्या, क्यों कल्याणकारी है? कंस, कृष्ण को कंस और राम को रावण बनने ये क्यों जरूरी है, क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि ये षष्ठी की आदि वाली आत्मा है। ईश्वरीय ज्ञान पा करके ये बहुत पावरफुल बन जाती है। ज्ञान तामसी बनता है, तामसी समय की जब शूटिंग होती है तो कृष्ण कंस बन जाता है, राम रावण बन जाता है, लेकिन अंतिम समय में दुनिया के बड़े से बड़े पापाचारी दुराचारी द्वापर युग में होते हैं, कलयुग के आदि में होते हैं, मध्य में होते हैं, या कलयुग के एकदम अंत में होते हैं। जब 5-7 रोज का आखिरी विनाश होगा उस समय दुनिया में पापाचारियों दुराचारियों का बड़ा भारी तांडव नृत्य होगा, विकराल रूप धारण करेंगे, अति हो जाएगी, फिर उनका मुकाबला कौन करेगा? कोई नहीं, तो खत्म कैसे होगी? ये रौद्र रूप धारण करता है, इसलिए मुरली में भी बोला है ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। अब वो चाहे एडवांस की दुनिया हो, चाहे आधारभूत ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया हो, और चाहे बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया हो, बच्चे जब कंट्रोल से पूरा ही बाहर हो जाएंगे, अति हो जाएगी, तो ये रौद्र रूप रुद्र ज्ञान यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी डाली जाती है? पहले सब देवताओं की आहुति डालते रहेंगे नाम ले लेकर के। ब्रह्मा देवताय नमः स्वाहा, विष्णु देवताय नमः स्वाहा, जगदम्बाय स्वाहा। फिर अंत में क्या कहेंगे? अंत में शंकर जी की आखिरी आहुति सब इकट्ठा करेंगे, स्वाहा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो ही निमित्त बना हुआ है सब स्वाहा करने के लिए। और
इसी समय में सुप्रीम सोल
है,
इसी समय में सुप्रीम सोल।
हाँ, सुप्रीम सोल तब तक बना ही रहेगा। आप तो कहते हैं जब आग लगकर पूरी होगी तो मैं क्या करूंगा यहाँ? मैं आता ही हूँ तुम्हारी राजधानी स्थापन करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए। ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, देवता धर्म की स्थापना हुई, देवता धर्म की राजधानी स्थापन हुई। धर्म पिताएं तो राजधानी स्थापन नहीं करते, राज्य स्थापन नहीं करते। कृष्ण का जन्म होगा तो राजधानी होगी या नहीं होगी? है?
होगी।
देवताओं की राजधानी तो होगी ना, तो राजधानी स्थापन हुई। शिव बाप आकर के कोई मुकर्रर रथ होता है उसको आप समान बनाए देता है, क्या रह करके करेगा?
तो 100 साल की है,
संगम युग है 100 साल का। ये नहीं कहा मैं 100 साल के लिए आता हूँ, क्या 100 साल के लिए आता हूँ ये नहीं कहा, क्या कहा? बहुत में बहुत करके संगम युग को सौ साल देना है और
तो उसमें तो कि जब कृष्ण जन्म ले लेगा होगा जब कृष्ण का जन्म होगा
हाँ?
तो उससे पहले सभी आत्माएं परमधाम चली जाएगी
जब जन्म होगा तब सब आत्माएं परमधाम कैसे चली जाएंगे सब आत्माएं क्या शरीर छोड़ के जाती हैं तुरंत पहले तो सूक्ष्म बदन में इकट्ठे होते हैं कुछ बुद्धियोग से जाते हैं जो बुद्धियोग से जाते हैं जो बुद्धियोग से जाते हैं वो नई दुनिया की सजन की शुरुआत करते हैं उनके शरीर का विनाश नहीं होता
बाबा का जीवित चरित्र का पुस्तक में ब्रह्मा को 33 वर्ष और विष्णु को 33 वर्ष और शंकर को 33 वर्ष वो लगा है
दिखाया
अर्थ
क्यों 76-77 से लेकर के 33 साल जोड़ो
कहाँ से कब से कम
76-77 से बाप की प्रत्यक्षता वर्ष संपूर्णता वर्ष नहीं मनाया गया तो कितने वर्ष हुए
2008 से
है?
2008 से
हाँ जी 76-77 से लेकर के 2008 तक 33 साल पूरे हो जाते हैं और
जिस कृष्ण का गायन बच्चे के रूप में है,
है?
जिस कृष्ण का गायन है
जिस कृष्ण का गायन बच्चे के रूप में
है वो तो एक्चुअल गायन जिस कृष्ण का वो तो संगम ही कृष्ण है
हाँ जी
लेकिन गायन तो हम बच्चे के रूप में दिखाते हैं कृष्ण का भक्ति मार्ग
हाँ तो बच्चा का मतलब क्या है बच्चा बुद्धि
लेकिन वो तो संपूर्ण है संगम वो तो बच्चा बुद्धि नहीं है ना
अरे बच्चा नहीं तो मक्खन ऐसे ही चुराता है दूसरों के यहाँ जाके संपन्न होगा तो मक्खन चुराएगा क्या चोरी करेगा माताओं को तंग करेगा
जो अपना सरसंबंध है भाई जो इस मिशन जो शुरू करते हैं क्राइस्ट से क्यों जोड़ते हैं उससे पीछे उससे आगे
क्रिश्चियंस का है तो क्राइस्ट से ही जोड़ेंगे ना
तो
हिंदुओं का थोड़ा ही है अब हिंदुस्तान में जिस संबत को मान रहे हैं वो क्रिश्चियंस को ही तो फॉलो किया है अपना तो किसी को पता भी नहीं है कि अभी कौन सा संबत चल रहा है विक्रमादित्य संबत किसी को पता है हाँ जी उन्हें अपने धर्म का ही पता नहीं धर्म पिता का ही पता नहीं तो संबत कहां से शुरुआत मानेंगे
हाँ जिस गीता के ऊपर तुम का छाप है और वो चेतन गीता है और
जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप है वो है चैतन्य बुद्धि वाली सीता सात्विक बुद्धि वाली पवित्र बुद्धि वाली और जिस गीता के दिल पर कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की छाप है वो है तामसी बुद्धि वाली अपवित्र बुद्धि हो गई किसी की बातों से प्रभावित हो जाए तो उसे पवित्र बुद्धि कहेंगे या अपवित्र बुद्धि कहेंगे अपवित्र बुद्धि कहेंगे वो जड़त्व बुद्धि वो चैतन्य बुद्धि बुद्धि तो है लेकिन जड़ बुद्धि है इसलिए बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते सारा जीवन मेरे साथ रहे मेरे साथ खाया, मेरे साथ खेला, मेरे साथ बैठे, सब कुछ किया, और फिर मेरे को नहीं पहचान पाया, तो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। फिर भी बाप कहते हैं नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और
सतो प्रधान जो व्यक्ति थे, सतो प्रधान जो व्यक्ति थे वो कब वो सतो सामान्य हो गया, सतो हो गया और समो प्रधान हो गया, इसका कोई हिसाब है?
76-77 में जो ज्ञान में निकले एडवांस में, वो अभी सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? विरोध कर रहे हैं या सपोजिशन कर रहे हैं? अपोजिशन कर रहे हैं। ऐसे ही जो जिस समय से निकलता है ज्ञान में, शुरुआत में सरेंडर बुद्धि होता है, शुरुआत में जो आत्माएं निकालेंगे वो भी बड़ी पावरफुल आत्माएं निकलती है भट्टी करने के तुरंत बाद, और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे सतो प्रधान से सतो सामान्य से रजो और तमो बनते जाते हैं। टाइम नुदा हुआ है, कोई आत्मा द्वापर में उतरती है तब सतो प्रधान, कोई आत्मा कलयुग के आदि में उतरती है तब सतो प्रधान है, कोई आत्मा सतयुग के आदि में उतरती है तब सतो प्रधान है।